हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11वां अध्याय श्लोक संख्या 10 और 11। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्भरधरुणबिम्बफलधरोष्ठात् पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जानि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदेसाङ्गपत्क्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जायमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया। भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद 11वां अध्याय जिसका शीर्षक है भगवान कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में प्रवेश करते समय जो द्वारिकावासी हैं वो भगवान के लिए विभिन्न प्रकार के भेंटे लेकर आ रहे हैं और भगवान के सुंदर मुख को देखकर उनके निर्जीव जो शरीर है उसमें पुनः जीवन प्रदान हो रहा है। अर्थात ऐसा लग रहा था जैसे भगवान को ना देखकर वो इतने व्याकुल हो गए थे, जैसे जान निकल गई थी उनकी, और आज पुनः जब भगवान के दर्शन किए हैं तो वे सब प्रसन्न हुए हैं और भगवान से विभिन्न प्रकार के अपने प्रेम के उद्गार कह रहे हैं कि जब आप नहीं थे तो ऐसा लगता था जैसे हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो गया है। वास्तव में भक्तों, ये केवल प्रेमी और प्रीतम ही समझ सकते हैं कि जब वो एक दूसरे से दूर होते हैं तो उनकी क्या हालत होती है। तो क्योंकि जो द्वारिकावासी हैं वो भगवान श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, तो उनके बहुत समय के बाद उनसे मिलने पर ये विलाप कर रहे हैं और भगवान को बता रहे हैं कि क्योंकि जब आप चले जाते हो तो जीना बहुत कठिन हो जाता है हमारे लिए, इसलिए कृपया आप हमें छोड़ कर मत जाया करो। आज श्लोक नंबर 10 में भी वो इसी प्रकार अपने विरह वेदना के विषय में बता रहे हैं और उसके बाद भगवान की द्वारिकापुरी के वैभव का वर्णन होगा। कृपया श्लोक नंबर 10 को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। द्वारिकावासी कह रहे हैं, कथं वयं नाथ चिरोषिते त्वयि प्रसन्न दृष्ट्या खिलताप शोषणम् जीवे मतु सुंदर हास्य शोभितम् अपश्यमाना वदनम् मनोहरम्। कथं वयं नाथ चिरोषिते त्वयि प्रसन्न दृष्ट्या खिलताप शोषणम् जीवे मति सुंदर हास्य शोभितम् अपश्यमाना वदनम् मनोहरम्। इति चोदीरिता वाच प्रजानां भक्तवत्सलः शर्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वत् प्राविशत् परम्। इति चोदीरिता वाच प्रजानां भक्तवत्सलः शर्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वत् प्राविशत् पुरम्। शब्दार्थ, कथम वयम नाथ चिरोषितम त्वयि चिरोषिते, चिरोषिते का मतलब होता है आप तो सदैव बाहर चले जाते हो और क्योंकि आपके बाहर जाने के कारण कथम वयम नाथ, हे प्रभु क्योंकि आप ही हमारे जीवन हो तो हम कैसे जिए। आपके जाने के बाद तो जीना बहुत कठिन हो जाता है। चिरोषिते त्वयि यानी तुम्हारे जाने के बाद, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद क्या चीज हमें देखने को नहीं मिलती, प्रसन्न दृष्टिया खिलताप शोषणम्। हमारे हृदय में जो दुख होता है, जो कष्ट होता है, हमें सिर्फ एक ही दुख है। वास्तव में एक प्रेमी को केवल एक ही दुख होता है कि उसे अपने प्रीतम के दर्शन नहीं होते। तो ये द्वारिकावासी भगवान से कह रहे हैं कि हमारे सारे कष्टों का निवारण केवल आपके दर्शन है, आपके सुंदर प्रसन्न दृष्टिया जो बहुत ही सुंदर हंसता हुआ जो मुख है उसके जब हम दर्शन करते तो हम अपने सारे कष्ट भूल जाते हैं। अखिल ताप शोषणम, सारे दुख जो है वो नष्ट हो जाते हैं। वास्तव में जीव आत्मा का केवल एक ही दुख है, वो कृष्ण से दूर है। और वास्तव में यदि कृष्ण के निकट आ जाएगा तो अखिलता पशोषणम, उसके समस्त ताप, समस्त कष्ट, समस्त दुखों का निवारण केवल इतने में है कि हम भगवान के निकट आ जाएं, भगवान के दर्शन प्राप्त हो, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो। आज हम सारे कार्य केवल और केवल दुखों का नाश करने के लिए ही कर रहे हैं ना, परंतु दुखों का नाश तो हो रहा नहीं है, क्योंकि वो सारे भौतिक कार्य हमें भौतिकता की ओर तो कर रहे हैं परंतु भगवान से दूर लेके जा रहे हैं। तो आत्मा कभी भी भगवान से दूर रहकर प्रसन्न हो ही नहीं सकती, चाहे उसे कितनी ही सुविधाएं क्यों ना प्राप्त हो। तो क्योंकि आपका सुंदर हंसता हुआ मुखमंडल देखकर ही हमारे कष्टों का निवारण हो रहा होता है, तो आप खुद ही सोचिए कि जब आप बार बार अलग अलग जगहों पे बाहर चले जाते हो हमें छोड़कर, तो हम आपके वियोग में कैसे खुश रह सकते हैं। खुश रहना तो दूर की बात है, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं, जीवे मते सुंदर हास शोभितम, जीवे म जीवित कैसे रह सकते हैं, ते सुंदर हास शोभितम, सुंदर यानी बहुत ही मनोहर है, हास यानी हंसता हुआ, शोभितम मतलब अलंकृत, यानी ये मुस्कान जो आपके सुंदर मुखमंडल को शोभायमान करती है। अपश्यमाना, जब हम उसको देख नहीं सकते तो वदनम मनोहर, ये जो मनोहर आकर्षक तुम्हारा मुख है उसको देखते नहीं है, तो तुम सोचो हम जी कैसे सकते हैं, तुम्हारे बगैर क्या जीना संभव है। क्योंकि तुम जब चले जाते हो तो फिर हमारे कष्टों का निवारण तो तुम्हारे दर्शन से होता है, और तुम्हें देखे बिना जीना तो संभव ही नहीं हमारे लिए, तो हम कैसे जी सकते हैं। जीवे मते आपके सुंदर हंसते हुए मुखमंडल को अपश्यमाना देखे बगैर हम कैसे जी सकते हैं। तो जब ये द्वारिकावासी भगवान से ये प्रेम आलाप कर रहे हैं तो भगवान बहुत ही अनुग्रह से उनको सुन रहे हैं, भगवान बड़े प्रेम से सुन रहे थे। आगे कहते हैं, इति चोदीरिता वाच प्रजानां भक्तवत्सल, क्योंकि भगवान भक्तों के वत्सल हैं, वत्सल मतलब इतना स्नेह करते हैं भगवान से, वत्सला उस जो नया नया जिसको बच्चा पैदा होता है ना उस गौ को कहते हैं। तो गौ अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्रेम करती, देखती है कि बच्चा गंदा लगा पड़ा है, उसके शरीर पर ब्लड होता है इत्यादि, लेकिन फिर भी वो अपनी जुबान से चाटता है, चाटकर उसको साफ करती है, उसको अपना दूध पिलाती है। वो ये नहीं सोचती कि कितना खराब है ये, इसको मैं अपने करीब, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस वत्स जो छोटा बच्चा होता है उस को साफ करते करते वो गौ खुद भी बीमार हो जाती है, परंतु वो इतना स्नेह करती है अपने बच्चे से कि उसके अपराध को नहीं देख, उसके गंध को नहीं देखती। तो भगवान को भी भक्त वत्सल कहा जाता है, अर्थात वो अपने भक्तों के अपराध को नहीं देखते, भले कोई कितना ही अपराधी क्यों ना हो। भगवान तो यहाँ कहते हैं, अपिचेत सुदुराचारो, अगर आप दुराचारियों में सबसे महान दुराचारी भी हो, भजते माम अनन्य भाव, और मेरा भजन करते हो तो मैं आपको साधु कहलाऊंगा, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं, इसलिए जब वो द्वारिकावासी बोल रहे हैं उनको शुणवानो अनुग्रहम दृष्टिया, वो बहुत ही अनुग्रह के साथ, बहुत दया के साथ वो सुन रहे हैं। भगवान कितने सुशील हैं, कितने प्रेमी हैं, एक एक की बात को सुनते हैं। वरना देखो यहाँ पर क्या होता है, महान लोग होते हैं, थोड़े से भी महान क्या, अब भौतिक दृष्टि से जो बड़े हो जाते हैं वो छोटे छोटे लोगों की बात सुनते नहीं, लेकिन भगवान देखें अभी वो हस्तिनापुर की छतों पर, जो महलों की छतों के ऊपर जो स्त्रियां खड़ी थी उनकी बातों को भी प्रेम से सुन रहे थे, और ये जो नागरिक है द्वारिका के उनको भी शुणवानो नो ग्रहम दृष्टिया और अनुग्रह से भगवान सबको देखते हैं, एक एक की बात सुनते हैं, एक एक की ओर देखते हैं, एक एक के ऊपर अपना प्रेम न्योछावर करते हैं और इस तरह एक एक को अपना स्नेह प्रदान करते हुए वेतनवन प्रविशित पुरम और इस तरह से वो अपनी पुरी में भगवान उनकी द्वारिका पुरी में आगे प्रवेश करते हैं। अनुवाद देखिए, हे स्वामी, यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं तो हम आपको के इस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख सकते, जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। भला हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं? उनकी वाणी सुनकर प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान ने द्वारिकापुरी में प्रवेश किया और उन सबों पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए उनकी बधाइयां स्वीकार की। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कृष्ण का आकर्षण इतना प्रबल होता है कि एक बार आकृष्ट हो जाने पर उनका विछोह सह पाना कठिन हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनसे हमारा संबंध उसी तरह शाश्वत है जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्यमंडल से संबंधित होती हैं। सूर्य की किरणें सौर विकिरण के सूक्ष्मश हैं, मतलब जो सूरज की किरणें हैं वो सूरज के सूक्ष्म अंश हैं। इस तरह सूर्य तथा सूर्य प्रकाश को विलग नहीं किया जा सकता। मेघों द्वारा उनका विलगाव क्षणिक तथा कृत्रिम होता है और ज्यों ही मेघ हट जाते हैं त्यों ही सूर्य की किरणें सूर्य की उपस्थिति में अपना सहज तेज बिखेरने लगती हैं। उसी प्रकार सारी जीव पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म अंश हैं, जो माया के कृत्रिम आवरण के कारण भगवान से विलग हो गए हैं। जीवों को इस माया के आवरण को हटाना है और ऐसा हो जाने पर वे भगवान को साक्षात देख सकते हैं और तुरंत ही उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जीवन के कष्टों को हटाना चाहता है, लेकिन हम में से कोई भी ये नहीं जानता कि इन्हें किस प्रकार से हटाया जाए। यहाँ पर इसका समाधान दिया गया है और यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे आत्मसात करें अथवा नहीं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस प्रकार सूरज की किरणों को सूरज से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है फॉर द टाइम बीइंग जब मेघ आ जाते हैं, बादल आ जाते हैं, तो बीच में सूरज की किरणों और सूरज के सेंटर में आ जाते हैं, तो थोड़े समय के लिए क्या होता है, वो दोनों अलग कृत्रिम, यानी कि एक तरीका है, गलत वो कृत्रिम विधि के कारण उन दोनों को थोड़ा अलग किया जाता है। उसी तरह भगवान के, क्योंकि सारे जीव भगवान के अंश हैं, तो भगवान से अलग किए ही नहीं जा सकते, लेकिन कभी ऐसा होता है माया के कारण जीव कृत्रिम ये जो आवरण होता है माया का, उसके कारण जीव भगवान से अलग हो जाता है और जीव को क्या करना है, किसी प्रकार से इस माया के आवरण को हटाना है। ये जो माया का पर्दा है उसको हटाना ही पड़ेगा, तभी जीव वास्तविक प्रसन्नता प्राप्त कर सकेगा। और यहाँ पर जो विधि लिखी गई है, क्या प्रसन्न दृष्टिया खिलता पशोषणम, और जब हम भगवान के सानिध्य को प्राप्त करेंगे तभी हमारे समस्त ताप समस्त कष्ट समाप्त हो जाएंगे। श्लोक नंबर 11 कृपया मेरे साथ पढ़िए। मधुर भोज दशारहार हर कुकुरांधक विष्णु भी आत्मतुल्य बलैर्गुप्ता नागैर्भोगवतीमिव मधुभोज दशारहार कुकुरांधक विष्णु भी आत्मतुल्य बलैर्गुप्ताम् नागर्भोगवतीमिव मधुभोज दशार्हार्ह कुकुरांधकविश्विभिः आत्मतुल्य बलैर्गुप्ताम् नागर्भोगवतीमिव। अब यहां से पांच श्लोकों में द्वारिकापुरी का वर्णन भगवान बता ये जो सूत गोस्वामी जो है वो भगवान की उस नगरी के विषय में बता रहे हैं कि द्वारिका किस प्रकार की नगरी है। तो पहले द्वारिका में जो अनेक पूर्वज राजा यादव हो चुके हैं उन यादवों के पूर्वजों के नाम बता रहे हैं कि कौन कौन से यादव राजा यहाँ पर हो चुके हैं। तो बता रहे हैं मधु अर्थात मधु राजा, भोज यानी भोज, दशारह दशाराज, अरह कुकुर अंधक और विष्णु भी। इस तरह से विष्णु वंश में फिर ये राज आया और ये इतने बलवान थे, मतलब ये सारे राजा जो हैं जो इसको